फिर एक और चीज़, एक हदीस आगे देखते हैं, इब्ने माजा की रिवायत है ये भी, 1846, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से यह हदीस है, कहती हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, फमन लम यामल बि सुन्नती फलैसा मिन्नी, तो जिसने मेरी सुन्नत पर अमल ना किया वो मुझसे नहीं है, लिहाजा क्या करो, वतज़व्वजू, ये लफ्ज़ है इस हदीस में, वतज़व्वजू, और तुम लोग शादी करो, फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम, इसलिए कि मैं तुम्हारी कसरत की वजह से दूसरी उम्मतों पर क़यामत के दिन फ़ख्र करूँगा, वमन कान ज़ा तौलिन फलजन के, और जो साहिब इस्तेताद हों, यानी दे कैन डू इट, दे हैव द मीन्स टू डू दिस, उनको चाहिए कि वो शादी कर लें, फ़मन लम यजिद फ़अलैहि बिस्सियामी फ़इन्नस्सौम लहू, जिसको शादी की ताकत ना हो, इस्तेताद ना हो, वो क्या करे, वो रोज़े रखे, क्योंकि रोज़ा उसकी शहवत को कुचलने का ज़रिया बनेगा। इस हदीस में हमारे लिए क्या गाइडलाइन है, पहली बात यह कि निकाह सुन्नत है, सुन्नत से मुराद है कि हर नबी ने शादी की, ठीक है, और जब अम्बिया कराम ने शादी की तो फिर उम्मतों को भी करना है, और फिर इसके अंदर जब सुन्नत है तो उसका तरीका भी तो होगा ना, कोई रोज़ा रखवाते हैं तो रोज़ा रखने का तरीका किसने सिखाया, और उम्रा करते हैं तो उम्रा का तरीका किसने सिखाया, अल्लाह के नबी से, देखा ना, सल्लू कमार आई तुम उनी सल्ली, तुम ऐसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ने देखते हो, और बाकी सारे कामों में क्या फरमाया, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाही उस्वतुन हसना। अब एक सवाल लिखिए कि जब हर तरीका नबी से सीखना है तो शादी किन से सीखें, इंडियन मूवीज से, इंडियन कल्चर से, दिल्ली से, न्यूयॉर्क वालों से? आज हमारा नमाज में क़िबला खाना काबा की तरफ, रस्म व रिवाज में हमारा क़िबला दिल्ली की तरफ, और लाइफस्टाइल में न्यूयॉर्क की तरफ, शादी का तरीका भी नबी से सीखना है। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी प्लेन। मैं आपको इंशाल्लाह एंड पे एक दो स्टोरी सुनाऊंगी अगर वक्त हुआ, जिससे आप देखेंगे कि इस्लाम में शादी कितनी आसान थी, और आज हम अल्लाह की बना माँ बाप की सारी जिंदगी की कमाई शादी पे लग जाती है, और अल्लाह ना करे बच्ची 4 माह बाद वापस आ जाए, माएँ रोती हैं, बाप रोते हैं। मेरे पास ऐसी मिसालों से मेरा फ़ोन भरा पड़ा, वो कहते हैं लड़की तो ले आए घर, ये बताएं जो शादी पे 4 लाख लगा था डॉलर्स में वो किधर जाएगा, फर्नीचर किधर से आएगा, यानी आपके इन शहरों में, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया के मुसलमानों में आज एक जुल्म है, और वो कह के अव्वल तो शादी होती कोई नहीं, इतनी मुश्किल कर दी, महंगी बहुत है। आप कहते हैं कि 80% गोरे शादी क्यों नहीं करते, इसलिए कि उनके पैसे नहीं होते, और उनकी माँ बाप और अब्बा अम्मा ने कोई सोना चांदी नहीं जमा करके रखा होता, उन्होंने खुद कमाना है और खुद शादियाँ करनी, वो कहते वी डोंट हैव मनी, कर्जे लेंगे तो फिर क्या, वो शादी का जोड़ा किराए पर लेते हैं, ड्राई क्लीन करा के वापस कर देते हैं, वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते, हम जैसे मुसलमान 1-1 लाख से तो ऊपर के जुड़ा आ रहा है ना दुल्हन का, ये तो मैंने कम से कम बोला, इससे ज़्यादा की तो हद कोई भी नहीं है। शादी का खाना खर्चा, एक वक्त में 500 लोगों को शादी पे बुलाते हैं लोग, एक बंदे का खाना आज मैंने इस मुल्क में रहकर देख लिया 500 रुपये से ऊपर का है, आम शादी का आम खाना, आप हलीम रोटी किसी को खिला दें या बिरयानी की प्लेट लेके कोई साथ चाय का कप खिला दें शादियों में। मैंने कल रात कंफर्म किया कि किसी के बेटे की शादी हो रही है, तो मैंने उनसे पूछा आपको क्या एस्टिमेशन मिला है खाने का, जो सारा कुछ उन्होंने बताया तो वो लाखों में था। मैंने कहा पर हेड क्या पड़ रहा है, तो उन्होंने कहा कि 5,200 था, 1 आइटम कम करवा दिया जो वो एक जॉइंट होता है गोश्त का, वो 700 पर पर्सन पड़ रहा था, वो निकाल के तो अब 4,500 रुपीज पर पर्सन मुझे चार्ज होगा जिन लोगों को मैं अपने बेटे के वलीमे पे बुलाऊंगा। आप 4,500 इंटू आप 500 लगाइए, 20 लाख रुपया बनेगा। इतनी मुश्किल शादी, इतनी महंगी शादी, और फिर इतनी फ्रेजल हो गई शादियाँ, जैसे चाइना की लाई हुई चीज़ें अक्सर जल्दी टूट जाती थी, कभी आपका तो मुझे नहीं पता, पता भी नहीं ये शादी होगी नहीं, जैसे गलत तार लग जाए तो खतरा होता है कि एकदम पटाखा होगा, निभ गई तो चल जाएगी, 2-4-6 माह बाद कोई बात ना सुने तो शुक्र है निभ गई है, वरना 2 माह बाद बच्ची परेशान है, 3 माह बाद वो परेशान है, पता चला वो वापस आके वो इधर आ गए, अब लेन देन पे झगड़े हो रहे हैं, बच्ची का फर्नीचर उधर पड़ा हुआ है, जेवर वो ले गई थी, माँ बाप का फिर 25-30-40 लाख रुपया डूब गया, लड़की घर आ गई, क्यों है ऐसा? इसलिए कि वी आर नॉट रियलिस्टिक। अन निकाह मिन सुन्नती कार्डों पर भी कभी लिखाते थे, आज वो भी नहीं लिखाते। अल्लाह के नबी ने कहा शादियां करो, और अगर तुम करो तो फिर बच्चे भी पैदा करो, मैं तुम्हारी कसरत पे फख्र करूंगा। हर चीज में हम ज्यादा होना चाहते हैं, बच्चे 2 या 3 से ज्यादा हो जाए हमें शर्म आती, कहते हैं अब इतने बच्चे लेकर साथ जाएं, हाय मेरे इतने बच्चे होंगे, यानी ये परसेप्शन कहाँ से आया दो बच्चे खुशहाल घराना। वो नहीं चाहते कि मुसलमानों के पास बच्चे भी ज़्यादा हो, हमने भी यही नहीं चाहा। और दूसरी बात है, आप में वो बच्चियाँ जिनकी शादियाँ नहीं हो रही बिकॉज ऑफ सम रीज़न, तो फरमाया कि तुम फालही बिस्याम, फिर नफली रोज़े रखिए। शहवत तपती है, इंसान की ख्वाहिश जो है वो पूरी हो ना हो, लेकिन कम अज़ कम उसके दिल के अंदर से वो दूसरी चीज़ें चली जाती हैं। तो आज एक पहली चीज़ आपने नियत की है कि नमाज को वक्त पर पढ़ेंगे। जब भी आदत बनाए आज इधर आने का, अपने आप को एक गिफ्ट दें कि नमाज से पहले रेडी रहें कि वक्त कितना रह गया, घर में है, बाहर है, जहां भी है, और जिस हद तक मुमकिन हो मिलके जमात करके नमाज पढ़वा लीजिए, ठीक है। दूसरी बात आज रखिए, रोजे रखना। आप में से कितनी बच्चियां रमजान के फर्ज रोजे रखती हैं पूरे? बच्चियां बड़े सभी रले सभी रखते हैं माशाल्लाह। में से जो छूट जाते हैं वो रखते हैं, जो नहीं रखते तो उनको मैं आज बता दूं कि वो रोजे भी रखने होते हैं, पूरा साल होता है उसमें आप मेकअप कर लेते हैं। तीसरी चीज ये है कि रमजान के अलावा भी कभी कोई रोजा रखा है? कौन से? शव्वाल के 6 रोजे, अय्यामे 20 के रोजे, पीर जुमेरात, ज़िलहज्जा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कसरत से नफली रोजे रखिए, इससे इंशाल्लाह ख्वाहिश बदलेगी। इसी तरह से एक और बड़ी प्यारी एडवाइस है नबी सल्लम की, आपने फरमाया हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से, ये रिवायत है बुखारी और मुस्लिम में, अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج। क्या फरमाया? कहते हैं कि हम नबी सल्लम के ज़माने में नौजवान थे, यानी इब्ने मसूद यंग एज के सहाबी थे, तो अल्लाह के नबी हमारे पास आते और देखते कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, गरीब थे, माल और दौलत भी नहीं थी। तो आपने हमसे फरमाया कि नौजवानों की जमात, तुम में से जिसे भी निकाह करने की माली ताकत हो इसे निकाह कर लेना चाहिए, क्योंकि निकाह नज़र को नीची रखने वाला और शर्मगाह की हिफाजत करने वाला अमल है। और जो कोई निकाह की वजह गुरबत, यानी बवजह गुरबत, वी कैंट अफोर्ड इट, अभी लड़का अपने पाँव पे नहीं खड़ा हुआ और इसी तरह की बातें करते हैं, तो उसे चाहिए कि रोज़ा रखे, क्योंकि रोज़ा इसकी ख्वाहिशात नफसानी को तोड़ देगा। आपको दो चीज़ें समझ आ गईं। पहली बात यह है कि शादी प्रायोरिटी पे है, कर लेनी चाहिए, और शादी के बाद इंसान को जो फवायद होते हैं उनका तस्करा है। अब सवाल ये है, अब जो थोड़ा सा आगे मज़ीद एक स्लॉट को आपको लेके चलती हूँ कि आप कहते हैं शादी क्यों करूँ, हर एक की शादी तो कामयाब नहीं होती, हर एक के साथ तो ये नहीं वो नहीं, और मैं अकेले भी खुश हूँ। यानी मैंने जब लव सिंगलहुड को सर्च किया ना, तो आज ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया में डिवेलप हो चुकी हैं, दे आर प्रमोटिंग सिंगलहुड, और वो कहते हैं क्या झंझट पालें, क्यों पालें झंझट, मैं क्यों पालूं। अभी ये जो मैंने आपको रीज़न शुरू में दिए उसमें एक रीज़न के कौन मुसीबत में पड़े, खाम खा जिम्मेदारियों में फंसे। कुछ माएँ भी आज यही चाहती हैं, मैं अपनी छोटी सी बच्ची को क्यों इतनी मुश्किलात में डाल दूं। तो याद रखिए कि जौज कौन होता है? जिंदगी का साथी, यानी जौज, अजवाज, जौजा, इस दवाजी जिंदगी, अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ देने वाले को जौज कहते हैं। शौहर बीवी का ताल्लुक बजाते खुद अजर हासिल करने का जरिया है। साहबे कराम ने अल्लाह के नबी से पूछा कि हम तो अपनी ख्वाहिश के लिए अपनी बीवी के पास जाएंगे, तो इसमें सवाब किस बात का? फरमाया अगर बगैर शादी के किसी और औरत से गलत ताल्लुक रखोगे तो गुनाह नहीं होगा। या ऐसे ही कि मैं अपना खाना खाऊंगी तो सवाब है, लेकिन मैं अगर आप में से या किसी और का छीन के खाऊंगी तो गुनाह। तो ये ताल्लुक जैसे नमाज है, रोज़ा है, इसी तरह आपस का ये ताल्लुक बजाते खुद भी अदर का जरिया है। इंटीमेसी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ एंड स्पाउसेस इज पार्ट ऑफ इबादा। यानी फॉर एग्जाम्पल एक इमाम थे, उन्होंने कहा आई एम गोइंग टू इबादा फ्रॉम एन अदर एक्ट ऑफ इबादा। यानी हमारा शौहर बीवी का ताल्लुक, शौहर का बीवी के मुंह में एक लुकमा डाल देना ये इबादत है, वो मोहब्बत से उसको देखेगा उसकी तरफ इबादत है। फरमाया बाहर कोई औरत देखी उससे देख कर दिल में ख्वाहिश पैदा हुई तो अपनी बीवी के साथ जाकर तुम ताल्लुक कर रखो, ये तुम्हें इबादत मिलेगी। यानी इस पार्ट ऑफ इबादा। और फिर औलाद अल्लाह देना चाहेगा तो औलाद भी मिलेगी, और आप सब खवातीन हैं, बच्चियां हैं, तो हम क्या बनेंगी? बीवियां। नेक बीवी के लिए जन्नत में बहुत बड़ी बिशारत है, और वो क्या है कि अगर शौहर अच्छा है, अल्लाह को राज़ी करने वाला है, तो आप अपने 5 फर्ज नमाज रोज़ा करके अपने शौहर की इताअत कीजिए, आप जन्नत में चले जाएंगे। बहुत बड़े बड़े काम तो अल्लाह हमसे मांगता भी नहीं है। लेकिन अब आगे चलते हैं कि इतनी खूबियों के बावजूद आज लोग क्यों सिंगलहुड को पसंद करते हैं? अकेले रहने और शादी ना करने की जो वजूहात है, इसमें अब लोगों का जो परसेप्शन बनता जा रहा है, पहले जो मैंने आपसे डिस्कस किए ना शादी में ताखीर, वो फैमिली बैकग्राउंड था, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू था। वहाँ हम सब कहीं जगह मजबूर हैं, लेकिन इस वक्त अब चंद चीज़ें मैं वो कहूँगी जो यंग बच्चियाँ, हो सकता है आप में से भी किसी की सोचो, वेस्ट में तो मेरे पास ऐसी बेशुमार मिसालें हैं, दे डोंट वॉन्ट टू गेट मैरिड, माँ बाप हैं, औरतें हैं, वो कहती बेटा 25 साल का हो गया शादी नहीं चाहता, वो कहती वो नॉर्मल है, कहती हाँ, मैंने कहा वो नॉर्मल नहीं है, कोई गड़बड़ ज़रूर है, एक मर्द जवान है, चारों तरफ फितना है, आजमाइशें हैं, और वो कहते हैं मुझे शादी नहीं करनी, तो लड़कों में ख़ास तौर पे शादी ना करने की बड़ी वजह क्या है, नंबर एक फैमिली और बीवी के अखराजात पूरे नहीं हो सकते, आई कैंट अफोर्ड दिस, कोई कहता है ये तो एक तीसरी टांग अपने साथ लगाने वाली बात है, मेरी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी, फिर सारा पढ़ाई डिग्री जॉब कैरियर की फिक्र, इसमें शादियों को टाला जा रहा होता है, फिर नेक्स्ट चीज़ क्या होती है कि जिम्मेदारियाँ हम नहीं उठा सकते, बस कहते हैं हमारे अंदर इमोशंस ही नहीं है, वी डोंट फील एनी सेक्सुअल नीड, बस कहते हैं कि हमारे जहनों में है जी कि हम अपनी बीवी को, या लड़की कहती है मैं अपने शौहर को खुश नहीं रख सकती, यानी ये साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं, नुकसान क्या होंगे अकेले रहने और शादी ना करने के नुकसानात को देखिए, सबसे पहली बात है सुन्नत की मुखालफत होगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अभी तक हमने दो तीन हदीस में देख लिया, और वो क्या है कि शादी करो शादी करो, जब हम शादी नहीं करते तो बिल्कुल पता कैसे है, जैसे अभी असर की नमाज का वक्त हुआ और हम नहीं पढ़ रहे, पढ़ लेंगे जी, ज़रूरी थोड़ी है साथ ही पढ़ें, क्यों फौरन फौरन हम नमाज पढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि शादी करना भी इसी तरह अल्लाह के नबी ने बता दिया जैसे कि है, तो आप लिखिए, जानते बूझते जो लड़की या लड़का कहता है मुझे शादी नहीं करनी, तो वो नबी सल्लम की सुन्नत की नाफरमानी करता है जो भी के हमने देखी। दूसरा इसका देखिए क्या होता है कि इंसान शैतान के हाथ में तर निवाला बन जाता है, ऐसा शख्स जिसको आप कह सकते हैं कि अकेला, अभी मैंने हदीस सुनाई थी ना कि जिसकी दोबारा शादी फौरन कर दो, क्योंकि ऐसे बंदे को शैतान ट्रैप करेगा, शैतान का वादा क्या है, बेहयाई का, आज भी आप देखिए सिंगलहुड से ही तो प्रॉब्लम्स हैं, तो आप देखिए कि ये बुराई तो फैलती जा रही है ना दिन ब दिन, अब मैरिड लोगों के भी कई अफेयर्स आ रहे हैं, लेकिन मोस्टली अनमैरिड लोग ट्रैप्ड हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ का माहौल क्यों ख़राब है, फिल्में गाने और एड्स और इसी तरह से कॉन्सर्ट, इसमें मोस्टली किन के जज्बात को उछाला जाता है, आप में जो मैरिड बच्चियां यंग बच्चियां भी, जैसे आपकी भी शादी हो चुकी है, क्या शादी के बाद एकदम बंदा इमोशनली स्टेबल नहीं हो जाता, मंगनी के बाद नहीं हो जाता, इधर उधर देखो इधर उधर देखो, पता नहीं मेरी किससे शादी होनी है क्या नहीं है, पता चल गया, आप इसको एक एग्जाम्पल से समझिए, आप सारे दिन थके हारे बाहर से घर गए, अब भूख लगी हुई ना, आप क्या देख रहे हैं, ढक्कन खोलेंगे क्या पका है, अम्मी ने क्या बनाया है, फ्रिज में क्या रखा है, जब एक दफा खा लेते हैं उसके बाद कोई देखता है, आपके बच्चों में बेटों में बेटियों में जो ज्यादा आपको ट्रबल में डाल रहा है ना, आप उसकी शादी कर दीजिए, आप देखेंगे कि शादी के बाद कम से कम उसको ये पता चल जाएगा कि मैं अपने आप को किधर खड़ा करूं। फिर इसी तरह से एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो हम मुस्लिम्स में भी दिखने लगा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, नफसियाती बीमारियां, आपको कहते कि मैंने इस साल पाकिस्तान आना था तो मुझे कितने लोगों ने मैसेजेस दिए, खुदकुशी पे दर्ज दीजिए, क्यों भाई, पाकिस्तान में बहुत सारे यंगस्टर्स हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, इज इट ट्रू, सच है कि झूठ है, मुझे बताएं, ऐसे तो नहीं किसी ने मुझे डाल दिया, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, $500 घंटे के दे के लोग अपने साइकाट्रिस्ट को दुख सुख सुना रहे हैं, देखिए कंपेनियनशिप टू बी लव्ड इट्स एवरी ह्यूमन्स डिजायर, इवन बच्चे की भी है, जवानी में पक्की बात है कि जब मर्द लड़के भी जवान होते हैं तो माँ बहनों के साथ जरा खटपट सी लगी रहती है, और एक खास हद तक लड़के कई दफा माओ के साथ चिपकते हैं बातें करते हैं तो माँ कहती पीछे हटो मेरे पास टाइम नहीं जाओ, तो उस उम्र में उसको एक यंग कब साथी चाहिए, कभी दुख कभी सुख कभी कुछ कभी कुछ, जब ऐसे लोग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार होते हैं ना, तो एक तो उनका ये मसला, एक और बड़ा नुकसान है, नहीं की शादी, आप शायद अपनी फैमिली में कुछ लोगों को जानती होंगी, अब नहीं की, लेकिन जब वक्त गुजर के अब बुढ़ापा हुआ तो तनखाई अकेले, वो कहते हैं ना कि पछताना तो है शादी करके पछता लो, और जो लड़कियां अपनी उम्र पे शादी नहीं करती या जो लड़के नहीं करते उनका बुढ़ापा बहुत मिजरेबल है, आपकी फैमिली में कई ऐसे लोग होंगे जो उस एज में पोते पोतियों वाले बन चुके होते हैं लेकिन जिनकी शादियां नहीं, वो उस वक्त बिल्कुल जहनी मरीज बन चुके होते हैं, फिर इसी तरह कुछ और चीज़ें लोगों के अंदर अकेले रहने और शादी ना करने की होती हैं, वो क्या जी, वुमन एम्पावरमेंट, हम बड़ी मजबूत खवातीन बन रही हैं, 30 मार खां बन रहे हैं, फिर मगरब की तकलीफ हो रही है, आज मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो इस लाइफ में अल्लाह ने आपको मुझे एक लिमिटेड चॉइस दी है. देर इज द मैटर ओनली ऑफ चॉइसेस, वी कैन चूज हेयर और देयर. फिर इसी तरह से आप देखिए इस्लाम की हदों के खिलाफ जीते. एक औरत को उमरा करना है, हज करना है, उसको महरम चाहिए. एक औरत रात को तन्हा अकेली घर में होगी, उसको खौफ आएगा, पेरेंट्स हमेशा साथ नहीं रहेंगे. अगर आपके किसी के दिमाग में भी ये ख्याल है ना कि मैं अकेली रह के बड़ी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हूँ, ये ज़्यादा देर नहीं रहना. अल्लाह आपके पेरेंट्स को सलामत रखे. अल्लाह ना करे इन दोनों में से कोई चला गया तो भाइयों और भाभियों के दरवाज़ों पर. और आप कहते मैं खुद कमा सकती हूँ. मैं कई ऐसी लड़कियों से मिलती हूँ बाहर की दुनिया में, कहती हम की मुसीबत पालें. क्या मतलब, अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, अपना घर दे रही है गवर्नमेंट, सब करिए, मज़े करें. वो मज़े कैसे मज़े हैं? देखिए वो गम जो मिलके गुजारा जाए वो कम हो जाता है, वो खुशी जो अकेले गुजारनी पड़े वो ज़्यादा मिजरेबल होता है बंदा. फिर इसी तरह से आप देखिए कि ये असल में खुद के परसेप्शंस हैं हमारे जेंडर्स के साथ. कभी कभी मर्द खुद को औरत बना लेता है. आई कैन कुक बाय माई सेल्फ, मुझे क्या ज़रूरत है बीवी का खर्चा पालूँ, मैं अपनी हांडी खुद पका लूँगा. और कई औरतें खुद को मर्द बनाती हैं. और वही जो शुरू में बात की कि जब एक औरत कमाने जो लग गई, वो कहती है अब मैं क्यों किसी के आगे हाथ रखूं. चलिए एक स्टोरी सुनिए. आम तौर पे आपने फिल्मों में शादियां होती देखी, फैमिलीज में शादियां होती देखी. एक ताबई थे, वो बस ताबई, प्रोफेसर सल्लम उनके कंपेनियन सहाबा. फिर सहाबा में से जिसने सहाबी को देखा उनको क्या कहते? ताबईन कहते. ठीक है, एक ताबई थे, उनका नाम था सईद बिन मुसैयब. लिख लें इनका नाम, सईद बिन मुसैयब थे. तो इनकी बेटी की शादी का वाक्य बड़ा दिलचस्प है और तारीख में उसको बहुत ही जगह लिखा जा रहा है कि सादगी, कुर्बानी, हमदर्दी, इवन गुर्बत और कई खूबसूरत तरह से था. इनकी बेटी बहुत खूबसूरत थी और इन्होंने उसको तालीम भी बहुत अच्छी दिलाई. शी वॉज सो ब्यूटीफुल गर्ल और बहुत एजुकेटेड भी थी. उस दौर का जो बादशाह कह लें जिसको खलीफा कहते हैं, उसका नाम था अब्दुल मलक, उसको वो बच्ची बड़ी पसंद आई. कहने लगा कि मैं इसको अपनी बहू बनाऊंगा. यानी आप कह लीजिए कि उस दौर के शहजादे के लिए एक आलम दीन की बेटी का रिश्ता उसने मांग लिया. लेकिन बाप इब्ने मुसैयब जो थे उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि बादशाह का जो बेटा था वो बिगड़ा हुआ था, रिलीजियसली ही वॉज नॉट साउंड. तो खलीफा ने उन पर दबाव डाल दिया, सख्तियाँ डाली, लेकिन इब्ने मुसैयब ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, इसलिए कि मेरी बेटी नेक है, दीनदार है. अब यहाँ माँ बाप के लिए भी मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूँगी, कभी कभी अपनी बच्चियों का बहुत अच्छा पालते हैं, उनको दीन की भी तालीम देते, बड़ी इज्जत में रखते, लेकिन शादी कहाँ करें उसमें गलती हो जाती है. आप लोगों से सिर्फ लड़के की तालीम देखकर या कुछ और देखकर उसको करते हैं. सैयद बिन मुसैयब जो थे उनके ऊपर बहुत प्रेशर भी था, लेकिन उन्होंने कुरैश के एक बिल्कुल कॉमन बैन था जिसका नाम था अबू विदाया, उनके साथ इनकी शादी कर दी. और वो कौन थे मैं आपको उनका वाक्य उन्हीं की जुबान से सुनाती हूँ. एक शागिर्द था ये. क्या कहते हैं अबू विदाया? कहते हैं कि मैं सईद बिन मुसैयब के पास पाबंदी से जाकर बैठा करता था. एक मरतबा चंद दिनों की गैर हाजिरी के बाद जाने का इत्तफाक हुआ. इब्ने मुसैयब ने पूछा इतने दिनों तक कहाँ गायब रहे? मैंने कहा मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, यानी इस शख्स की पहली बीवी फौत हो चुकी है, इसलिए हाजिर ना हो सका. फरमाया मुझे खबर क्यों ना दी, मैं तजहीज़ो तकफीन में शरीक होता. वाई डिडंट यू इन्फॉर्म मी, मैं तुम्हारी बीवी के कफन दफन में मदद कर देता. खैर थोड़ी देर बाद जब मैं उठकर जाने लगा तो उन्होंने कहा क्या तुमने दूसरी का इंतज़ाम किया? अब सुनिए ज़रा, पहली बीवी फौत हो गई है तो क्या अब तुमने दूसरी का इंतज़ाम किया? अब इनका जवाब सुनिए. कहते मैं गरीब हूँ, नादार हूँ, दो चार पैसे का बंदा हूँ, मेरे साथ कौन शादी करेगा? यानी मीन के कौन मुझे बेटी देगा? कहने लगे मैं इंतज़ाम करूँगा, तुम तैयार हो? मैंने कहा बहुत खूब. कहते हैं कि सईद साहब ने उस वक्त 2-3 दिरहम पर, यानी हक मेहर में रखे 2 या 3 दिरहम, और अपनी बेटी का निकाह पढ़वा दिया. जब मैं वहाँ से उठा तो खुशी से मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ. घर पहुँच कर रुख्सती के लिए फिक्र में पड़ गया. शाम के वक्त सईद बिन मुसैयब अपनी बेटी को अपने साथ चलने का हुक्म दे रहे हैं. पहले 2 रकत नमाज अदा की और 2 रकत अपनी बेटी से पढ़वाई. इसके बाद इसको लिए हुए मेरे घर पहुँचे. मैं मगरिब के बाद रोज़ा इफ्तार करने जा रहा था कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया. मैंने पूछा कौन? आप ज़रा इमेजिन किया कि ही वॉज़ नॉट इवन एक्सपेक्टिंग. जवाब मिला सईद, पूरा नाम नहीं लिया, कहते मैंने सोचा सईद इब्ने मुसैब तो अपने घर और मस्जिद के अलावा कहीं आते जाते नहीं, यानी उनका जहन भी नहीं गया कि ये मेरे अब ससुर हैं या मेरे उस्ताद हैं। मैंने कहा कोई और होंगे, तो खैर ये सईद कौन है? उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा सईद इब्ने मुसैब थे। इन्हें देखकर मैंने कहा आपने क्यों जहमत गवारा की, मुझको बुला दिया होता। फरमाया नहीं, मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए था। फिर फरमाया तुम तन्हा आदमी थे और तुम्हारी बीवी मौजूद थी। मैंने ख्याल किया कि तन्हा रात क्यों बसर करो, इसलिए तुम्हारी बीवी को ले आया हूँ। वो इनके पीछे खड़ी हुई थी, उन्होंने इसे दरवाजे के अंदर करके बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। सोचिए ज़रा कितनी आसान शादी है। मेरी बीवी शर्म से गिर पड़ी, मैंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। इसके बाद छत पर चढ़कर पड़ोसियों में ऐलान कर दिया, आज इब्ने मुसैब ने अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दिया और इसे मेरे घर पहुँचा गए। मेरी माँ ने दस्तूर के मुताबिक 3 दिन तक इसको बनाया संवारा। बनने संवरने के बाद मैंने इसको देखा तो नहायत हसीन, किताबुल्ला की हाफिज, सुन्नत रसूल की आलिम और हकूक़ शोहर की वाकिफ कार औरत थी। आप क्या कहेंगे इस वाक्य पे? ना जोड़ा, ना शादी, ना पार्लर, ना फोटो सेशन, ना ए, ना बी, ना डी। कल रात को मैं कहीं से गुजरते हुए मेरी नज़र पड़ी आप ही के शहर में, तो बहुत बिग साइन लगा हुआ था ब्राइडल स्टूडियो और उसके नीचे भी कुछ लिखा हुआ था, तो मुझे समझ आ गया कि इस जगह दुल्हनों को सजा संवार कर फिर उनका फोटो शूट होते हैं। जी आप कुछ कहिए।
जी मैं ये पूछ रही थी आपसे कि जैसे अभी आपने ये वाक्य बताया तो इसमें जब उन्होंने उनसे कहा कि मैं अपनी बेटी देना चाहता हूँ तो उन्होंने अपनी बेटी से जाके पूछा भी नहीं।
जी बहुत ही अच्छा सवाल है, चले इसी पे सवाल कर लेते हैं कि सैयद बिन मुसैब ने अपनी बेटी से नहीं पूछा? पूछा, और उनको पता था कि मेरी बेटी की क्या चॉइस है? डेफिनेटली उन्होंने अपनी बेटी से पूछा और उनको यकीन था कि मेरी बेटी को कैसा चाहिए। थोड़ी सी इस वाक्य से 1, 2, 3 मॉरल्स देते हैं, आपको बहुत सारे ऑब्वियसली मिल भी रहे होंगे। पहली बात है कि एक पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की और अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस थे, ये पर्दादार वो बच्ची थी। दूसरी बात है खूबसूरत थी, शहर में उसके इल्म के चर्चे थे, एक से एक अच्छा रिश्ता मिल सकता था। तीसरी बात देखिए कि वक्त के खलीफा ने रिश्ता दिया, आज कितने माँ बाप ऐसे मौके पे पिघल ना जाए। इतना फेमस मशहूर और इतना खाता पीता शख्स आपकी एक आम से घर की बच्ची के लिए रिश्ता ले आए तो हम क्या करेंगे? लेकिन चूँकि बाप ने बेटी को तालीम दी थी, वो अगर वो बादशाह का जो बेटा था उसकी जौजियत में चली जाती वो खुश नहीं रह सकती थी। उसके तरीके ठीक नहीं थे, उसके चाल चलन ठीक नहीं थे, तो उन्होंने दुनिया की दौलत की बजाय बेटी की आखरत को देखा और आज वही बात उस बच्ची की कह लीजिए कि शोहरत बन गई। फिर आप देखिए जो आपका सवाल था इसमें कमल यह है कि बाप ने बच्ची को पूछे बगैर रिश्ता तय कर दिया और बेटी ने एक लम्हे में भी देर ना की और बाप के फैसले को तस्लीम किया। इससे क्या पता चलता है कि उस बाप ने उसको जो तालीम दी थी उस बच्ची को अपने बाप के ऊपर ट्रस्ट था। अब ऐसी औरत के साथ जो मामला हुआ होगा आप सोचिए आज कैसा। अब इसको ज़रा सा रिलेट करते हैं आज के दौर में, कोई एक फिल्म, किसी ड्रामे या हमारी तो अपनी लाइफ स्टोरीज ही बहुत सी हैं। आप खुदा ना खास्ता किसी ऐसी शादी का हिस्सा हों जहाँ रस्म व रिवाज के पुलंद हैं। आज शादी कितनी मुश्किल हो गई है, और आज भी मैं कहती हूँ कि लोग फिल्में देखना छोड़ दें तो हमारी शादियाँ आसान हो जाए। आज भी लोग इर्द गिर्द से जो कुछ कर करा रहे होते हैं, अगर आप देखें इन सारी चीज़ों को देखें तो शादियाँ उनकी ख़राब हो गई। और आप देखिए कितना बड़ा जुल्म है, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, आज भी यहाँ मेरे लिए 50% के पास रहने की जगह भी नहीं है। रातों को आप सड़कों के ऊपर से गुजरते हैं तो आप देखते हैं कि क्या हालात हैं और कैसी चीज़ें हैं। क्या ये ह्यूमन है? इज़ इट ह्यूमन? चले मैं ज़्यादा ना भी कहूँ, डरते डरते कह रही हूँ 50 लाख रुपया लगा दें। क्या इस कराची शहर में हर बाप जिसकी 4 बेटियाँ या 2 बेटियाँ 2 बेटे हैं उसके पास 50 लाख परहड़ है? आज भी आपके एक ड्राइवर की तनख्वाह 20 से 25 हज़ार है महीने की। आज भी आपके माली बाबा की तनख्वाह 15 से 20 हज़ार से ज़्यादा नहीं होगी। तो क्या ज़रूरी है इन चीज़ों को हम प्रमोट करें? कुछ सवालात लेते हैं आपके, इसी को इंशाल्लाह ताला अब लेके चलते हैं। ये कहती हैं कि कज़न्स के साथ फ्री मेल जोल हलाल है कि हराम? देखिए इट्स 100% हलाल है, शर्त एक है कि वो कज़न फीमेल हो। सेम जेंडर कज़न्स का एक दूसरे के साथ तहजीब और महजब अंदाज से घुलना मिलना 100% हलाल है। और अपोजिट जेंडर, इसी में आप लोगों ने एक और सवाल है, दोनों को जोड़ देती हूँ। व्हाट इज हलाल एंड हराम डेटिंग? बिल्कुल, हलाल डेटिंग भी है, हराम डेटिंग भी है। हलाल डेटिंग कौन सी है? जो खुद माँ बाप अपने सामने सबके गवाह बनाकर बच्ची को अपने मियाँ के साथ भेज देते हैं। आफ्टर मैरिज किसी मर्द जिससे आपकी शादी होती है उससे आपकी डेटिंग हलाल है, और बिफोर मैरिज इवन विद मंगेतर इज हराम। कजन्स हों या मंगेतर हों, चले मैं इस पे बात कर देती हूँ थोड़ी सी, शायद किसी को फ़ायदा हो जाए। आप देखिए कि हमारे यहाँ कोई गैर लड़की लड़का आपस में मिले तो हो सकता है थोड़ी सी कोई बातचीत हो, और अगर ज़रा सा उसको आगे कर दें नहीं वी वॉन्ट टू गेट मैरिड, तो ज़रा सा उनका गुना कम हो जाता है कि नहीं ये सीरियस है, ये फ्लर्टीज नहीं है। लेकिन अगर कजन्स की बात की जाए, आप माओं के साथ रिक्वेस्ट के साथ बात करूंगी, इतने दर्दनाक वाकयात हमारे इर्द गिर्द हैं, और वो क्या है, इंटरेक्शन विद कजन्स नहीं बल्कि विद मंगेतर। इस्लाम में इसकी क्या हैसियत है, दे आर जस्ट लाइक कोई और गैर महरम है, इवन उससे भी डेंजरस है। किसी लड़के से राह जाते लड़की कभी भी कोई ऐसी फ्यूचर प्लानिंग की बात नहीं करेगी, लेकिन मंगेतर में क्या बातें होती होंगी, सूरत यासीन पढ़ते हैं, सूरत बकरा की तफसीर करते हैं, अगर पढ़ते करते भी हैं, अगर उसकी भी कोई इजाज़त नहीं है कि आप दो लोग बैठकर एक तरीके से करें। देखिए मैं माँ बाप पे इस पे बात करूँगी, इधर बच्चा और बच्ची जवान हुए और आपको अच्छा रिश्ता मिला, फौरन शादी कर दीजिए, शादी कर दीजिए। ये जो नंबर एक मंगनी और वो भी दो दो चार साल लंबी, फिर उसमें अब ये ईद जा रही है, शबरात जा रही है, अब उसके कपड़े जा रहे हैं, अब उधर शादी है लड़का दे। आज का दौर मैं इस कम से कम लास्ट 3 मंथ्स के आपको अगर फिगर्स बताऊँ ना, व्हाट आई केम टू नो, एटलीस्ट पांच मंगनियाँ अच्छे अच्छे यानी पढ़े लिखे बच्चे बच्चे, इवन डॉक्टर्स और इवन पढ़े लिखे बच्चे, उनकी मंगनियाँ टूट गई हैं। एक बच्चे की मंगनी क्यों टूटी मैं बता रही हूँ आपको, यानी अच्छी नोबल फैमिली है, बच्चे के साथ शुरू से घर में एक बड़ा रिस्ट्रिक्टेड माहौल है कि भाई यही जैसे आपको बताया कि जेंडर डे का दोनों ऑपोजिट जेंडर के साथ एक खास ताल्लुक ना हो, तो माँ ने उसकी मंगनी कर दी। फ्यू मंथ्स बाद लड़की की माँ एक खदशा शो करती हैं कि आपके बेटे में इमोशंस नहीं है, इधर क्या व्हाट्स रॉन्ग, कहती मेरी बेटी को फोन ही नहीं करता, आपके बच्चे में प्यार नहीं है, ऐसी बातें शुरू ही इन्होंने कहा, आपको खुश नहीं होना चाहिए, एक शरीफ बच्चा है उसके घर में शुरू से यही माहौल चला है, शादी से पहले इवन मंगेतर इज नॉन महरम। कुछ मैं एक दो माँ चार बर्दाश्त किया, उसके बाद लड़की वालों ने नो कर दी कि आई थिंक सो कि आपका बेटा हमारी बच्ची को खुश नहीं रखेगा। और मैं पर्सनली उस फैमिली को जानती हूँ, अगर वो बच्ची उस घर में आ जाती, जो मेरा गुमान है ज़ाहरी तौर पर दे आर एजुकेटेड डिसेंट और दीन से वेरी क्लोज फैमिली है, वो बच्ची राज करती, वो बाहर के लड़के जैसे सीधे होते हैं वो वैसा सीधा ही है, जैसे अच्छे शरीफ चुरफ है, लेकिन उन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार दी। सेम थिंग हैपेंड ऑपोजिट वे में किसी और की लड़की के साथ, उनकी लड़की के साथ उसके इन लॉज को प्रॉब्लम क्या था कि हमारा बेटा इसको फोन करता है तो आपकी बेटी आगे से बात नहीं ज्यादा करती। मुझे बताइए ना, आप क्यों इतनी मुश्किल में डालते हैं अपने आप को? आप सब भी यंग बच्चियां हैं, आपको अल्लाह ने पूरा इख्तियार दिया है, जब आपके घर रिश्ता आए अब बेशक माएँ थोड़ी देर कान बंद कर लें अगर दोबारा मुझे बुलाना है तो। देखिए इस्लाम इज वेरी ब्लंट, आपके कपड़ों को चॉइस कराते हैं आपसे अम्मी अबू, ये पहनोगे कि नहीं, ये कपड़े ये जूते स्कूल ये कॉलेज ये वो, तो रिश्ता भी आपको पूछ के किया जाएगा। हाँ ये अलग बात है कि आप कितनी को समझदार हैं, अब आपको समझ नहीं कुछ नहीं है तो और बात है। इस्लाम क्या चाहता है, मैं इसको ना बड़ा अच्छे तरीके से चाहती हूँ कि आप समझ कर उठिएगा, और वो क्या है, नंबर एक, आप पेरेंट्स पे फर्ज है कि बेटे की तरबियत बेटे को कामयाब बनाने वाले रूल्स को सामने रखते हुए कीजिए, और बेटी की तरबियत बेटी को कामयाब होते हुए रहने पे करें। अल्हम्दुलिल्लाह इस पे हमने काफ़ी दफ़ा ही मैंने बात की थी कि हम इस पे करेंगे, और फ्यू मंथ्स अगो मुझे मौका मिला, आपको यूट्यूब पे एक लेक्चर मिलेगा, यानी हाउ बेटा इज डिफरेंट फ्रॉम बेटी। अल्लाह ताला कहते हैं लैस ज़करु कल उनसा, सूरत आले इमरान में हज़रत ईसा और मरियम और उनके नाते से ये बात आती है लड़के लड़की की। तो सबसे पहले तरबियत ठीक कीजिए, बेटे को कवाम बनाइए, आपके बेटे ने आज का बेटा कल का शौहर परसों का बाप फिर वो दामाद भी बनेगा। एथिकली अपने बेटे के अंदर गैरत लाइए, क्या आपका बेटा अपनी बीवी के लाए हुए बेड पर सोएगा? आपकी बीवी के घर से आई हुई घड़ी बांध का टाइम देखेगा, इसके अलावा उसको टाइम नहीं दिखता। आमतौर पे वो हो सकता है बेचारा 2,000 की जूती पहनता हो, और ससुराल से जब तक 20 से 25 हज़ार की जूती ना आ जाएगी वो नहीं चलेगा। ये हो रहा कि नहीं हो रहा? और फिर जूती पहननी भी पाँव में ही है, सर पे फिर भी नहीं रखनी। वो लोग जो आम तौर पे बेचारे मतवसत घरों में रहने के बावजूद बड़े मीडियम टाइप के कपड़े पहनते हैं शादियों में ससुराल से, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो सवाल लिखिए कि आपका वो दामाद जो कल आपकी बेटी के साथ चलेगा फिरेगा, उसके साथ सोएगा, आप उसको कैसा इंसान देखना चाहते हैं? कभी भी किसी की पंप एंड शो से, उसकी एजुकेशन से, उसके नाम से मुतासिर ना हो। अपनी बच्ची को अगर आप रिश्ता दे रहे हैं तो अखलाक वाला। अभी आपको सैयद बिन मुसैब की कहानी सुनाई, जिलबीब की कहानी आप लोगों ने सुनी भी है। अल्लाह के नबी के पास एक शख्स आए, ही वॉज हबशी यानी अफ्रीकी, ब्लैक, मक्का का नहीं था, परदेसी था, गरीब था। जब मदीना में आए तो शादी की जरूरत महसूस हुई। उस दौर में शादी इतनी आसान थी, जैसे ये मस्जिद है ना, यदि मैं आपको एक आइडियल स्टेट ऑफ इस्लाम बताऊं ना कि अगर पाकिस्तान में आइडियल सिचुएशन हो, तो एक यंग लड़का, उसके पेरेंट्स हैं, वो अपने माँ बाप को कहता है कि मेरी शादी कर दें, तो माँ बाप नहीं करते ना, तो ये मस्जिद नसीम की मैनेजमेंट के पास आ सकता है और इमाम साहब या जो भी यहाँ के बड़े उनको कह सकता है कि इमाम साहब मुझे शादी की ज़रूरत है, मस्जिद में आने वालों में से किसी की भी बेटी हो तो मैं आपको पेश करता हूँ, मेरी उससे शादी करा दें। लड़का तो ये खुल के कह सकता है। फिर वो अम्मा के जूते टूटते हैं या नहीं टूटते, या वो ट्रॉली कल्चर के नाम पे लड़कियों को देखने जाती है नहीं जाती, आराम से बैठे अपने घर में। नबी सल्लम के पास आके लोग कहते थे अल्लाह के नबी मुझे शादी करनी है। वो जिलबीब आ गए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी मुझे शादी करनी है। आपने कहा अच्छा, फलां घर है उधर चले जाओ, उनकी बेटी अच्छी है, उनको जाके कह देना कि मुझे मोहम्मद सल्लम ने भेजा है आपकी बेटी का पैगाम देकर। खैर वो चले गए। अब ज़रा जहन में लाइए, आप एक बेटी के बाप हैं या माँ हैं। जब उन्होंने जाकर रिश्ता पेश किया तो माँ बाप सोच में पड़ गए, हम क्या कहते हैं किस नज़र से दें? देखिए ना, इलीगल, कोई उसके पास अमेरिकन वीज़ा नहीं था या पासपोर्ट नहीं था, यूरोपियन नहीं था। दूसरी बात है कि वो ब्लैक थे। तीसरी बात, कुरैशी नहीं थे। चौथी बात, मनी नहीं। माँ बाप सोच में पड़ गए, करीब था कि नो कह देते। वो बच्ची जो अंदर बैठी, अक्सर बच्चियाँ वैसे भी सुनी रही होती हैं कान लगाकर दरवाजे के पीछे क्या हो रहा है, वो बाहर आ गई। उसने कहा अम्मा अब्बा, आप मेरे से निकाह कर दें, अगर अल्लाह के नबी ने इसको रिकमेंड किया तो इसमें कोई खूबी तो होगी, और अगर ये खूबसूरत नहीं तो नबी सल्लम खूबसूरत हैं, ये कुरैशी नहीं तो अल्लाह के नबी कुरैशी हैं, ये पैसे वाला नहीं तो आप तो दुनिया के कैसे सरदार हैं। और उन्होंने कहा आपको नहीं इतराज़ तो हमें क्या इतराज़, शादी कर दी। आप देखिए कि थोड़े अरसे में वो शख्स मदीना का एक अमीर ताजिर बन गया, मेहनत की, और दोनों में अल्लाह ने इतना प्यार डाला जिसको आज की जुबान में कहते हैं देवर क्यूपिड कपल। तो बच्चों की, बच्चियों की शादी में देर ना कीजिए, फर्स्ट थिंग ये। बेटियों की रिश्ते आए, दो मेयार अल्लाह ने दिए, मन तर दऊ न दीन हो व खुलू का हो, दीन और अखलाक। आप कहते हैं ये फ़र्क क्या होता है? दीन के हाफिज बच्चा, और अखलाक क्या है कि अब उसको बीवी को रखना भी आता है और वो बदतमीजी तो नहीं कर रहा। और इतनी आसान शादी थी। इसी तरह एक औरत, चूंकि एक बड़ा रेवोल्यूशनरी दौर चल रहा था, और एक औरत नबी के पास आती है, कहती है कि मैं अपने आप को हिबा करती हूँ, आप मेरी जिससे मर्जी शादी करवा दें। यानी ये कब होता है? जब पेरेंट्स का मूड और है और बच्चों का और है। आज के दौर में मैं फील करती हूँ, बल्कि एक बड़ा करंट इशू है, शायद आप में से किसी ने ये क्वेश्चन लिखा हो, बच्चियाँ दीन पर आ जाती हैं, अल्लाह उनको कुरान से जोड़ देता है, उनकी ज़िंदगी में इस्लाम का कोई एक ऐसा एंगल खुलता है, पेरेंट्स वही रिवायती हैं, वो कहते हैं जी ये फूफो के बेटे से ही करनी है, खाला के बेटे से ही करनी है। वो फूफो का बेटा नमाज भी नहीं पढ़ता, खाला का बेटा बेचारा शिर्क में फंसा हुआ है, अब बच्ची क्या करे? बिल्कुल खानी करेगी। देखिए दोनों में से ज़्यादा समझदार कौन है, उसकी बात मानी जाएगी। आप बदतमीजी नहीं कर सकते, लेकिन यू हैव द फुल राइट टू से नो। और फिर उसके बाद जो है कि शादी जब होती है, सिंपल शादी, झट मंगनी पट ब्याह, वो शादी आसान है जिसमें कम खर्च होता है, वो मर्द के लिए बहुत ही खुशकिस्मती का जरिया है। तो एक और सवाल ले लेते हैं आपका, और वो कहती हैं कि कज़न मैरिज, या आज कज़नों की क्यों शामत आई हुई है? बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आती, क्योंकि बाकी दुनिया में इसको अच्छा नहीं समझा जाता। इसके ऊपर मैं सोचती हूँ कि शिद्दत नहीं बरतनी चाहिए। एक जनरल रूल ले लीजिए, अगर दोनों का सेम माइंड सेटअप है, रिलीजियसली दोनों ऑन सेम पेस, तो अपनों से अच्छा ज़्यादा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इट शुड बी वेरी इजी टू एडजस्ट। हालांकि घर एडजस्ट होना ज़्यादा आसान है कोई गैर से, उनकी बहुत सारी बातें आपसे डिफरेंट होंगी, खाने के, पकाने के, सोने के, जागने के तरीके। फूफो का बेटा बहुत अच्छा होगा, शर्त यह कि दोनों का सेम माइंडसेट हो, अच्छा जहन हो, अपने से ज़्यादा कोई भी अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन माइंडसेट बदल जाए एक का स्टैंडर्ड और दूसरे का, तो अपने से ज़्यादा बुरा भी कोई नहीं हो सकता। इसलिए नबी सल्लम ने जो कहा, दीन और अखलाक को देखो। और आप लड़की ढूंढने जा रहे हैं तो क्या करें, चार चीज़ें आपने क्या फरमाया कि चार वजूहात पे औरत से निकाह किया जाता है, और उसमें दीन, ली मालिहा, ली दीनिहा, ली जमालिहा, ली हसबिहा, खूबसूरती, खानदान, दौलत, दीन, चारों मिल जाए सोने पे सुहागा। तीन चीज़ें मिल जाए, दीन नहीं है, नहीं करें। दीन मिल जाए उसके साथ, बाकी तीन में जो मिलता है ले लें, बोनस है, दैट्स इट। ठीक है, तो लिहाजा कज़न मैरिज के बारे में कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं रखना चाहिए। आप देख लीजिए, बास लोग कहते हैं जी इसमें बच्चे नहीं बचते, हैंडीकैप बच्चे, तो आपको पता है कि गोरों के कितने बच्चे हैंडीकैप्ड हैं और उनमें से कोई किसी का कज़न नहीं होता। ठीक है, तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, ये वैसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, और जितना ज़्यादा आप अल्लाह ताला पे इन मामलात को छोड़ें उतना ही बेहतर है। जो औरत इद्दत में है, क्या वो ऐसी महफिल में आ सकती है जबकि घर वाले इजाज़त नहीं देते इस्लाम के नज़रिए से? बताएं, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इद्दत का मतलब क्या है? इद्दत का मतलब है वेटिंग पीरियड। वो औरत दूसरा निकाह नहीं कर सकती इद्दत के दौरान, और अगर बेवगी की इद्दत है तो उसमें ऑफ कोर्स किसी भी किस्म की कोई आराइश या ज़िबाइश नहीं है। कहीं आकर ऐसी कोई क्लास लेना, जुम्मा पढ़ना, किसी ऐसे काम जो जायज़ ज़रूरत है उसके लिए दिन में उसका जाना और आना, उसमें कोई हर्ज नहीं है इंशाल्लाह। ये एक और इद्दत का सवाल है कि इद्दत हर उम्र में होती है, मसलन 60-70 की उम्र में, और शौहर का इंतकाल होते ही इद्दत इसी वक्त शुरू हो जाती है? जी बिल्कुल। देखिए, जो इद्दत का कोई भी ताल्लुक एज से नहीं है, और हस्बैंड की डेथ के साथ ही शुरू हो जाती है, और वही है। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि मुझे और आपको इस दुनिया में भी हक के और खैर के साथ रखे, और जन्नत में भी हम सब को साथ करें। आप देखिए, ये दुनिया बहुत थोड़े दिन की चॉइस है, हम इसमें से जो मर्ज़ी चाहे पिक कर लें, वी हैव फ्री विल, ओपन चॉइस। और अल्लाह करेगा कि जब हम दुनिया में अल्लाह ताला की मर्ज़ी का रास्ता इख्तियार करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जितना ज़्यादा अल्लाह ताला पे आप नज़रें रखेंगे उतना ज़्यादा आपका दिल चाहेगा। आपको ख़ुद को फ़ोर्स करना पड़े, हो सकता है आज भी आप में से कोई बाय फोर्स भेजी गई हो, लेकिन ये याद रखें कि चॉइस इज़ योर्स। इस ज़िंदगी में जो चूज़ कर लेंगे सारी ज़िंदगी उसका असर रहेगा। अच्छा कर लीजिए, बुरा कर लीजिए। अभी आज शादी का मौजू हुआ ना, एक फैसला ही होता है। आपको किसी लड़के से शादी करनी है, कर लीजिए, आपके पेरेंट्स मान जाएंगे, करवा लीजिए, यू हैव टू फेस इट, फिर आपको भुगतना पड़ेगा। कितना सोच के हम फैसला करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह इस ज़िंदगी की जो चॉइसेस हैं उसको भी सामने रखना है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो बेहतरीन तरीके से आपको, मुझे अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझने ला बनाए। तो मैं यहाँ इंशाल्लाह चंद जुमले बोल देती हूँ दुआ के आप सबके लिए भी। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाहुम्मा अस्तुर अवरातिना व आमिर अवातिना। अल्लाह ताला आप सब का यहाना कबूल फरमाए, आप सब की नेक हाजात को पूरा फरमाए, हम सब को अपने माँ बाप के लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। जो माँ बाप जिंदा उनको सेहत और आफियत वाली ज़िंदगियाँ अता फरमाए। भाई बहनों को या अल्लाह मोहताजी और शर से बचाए, और या अल्लाह हमें हमारे माँ बाप को और माँ बाप को हमारा कोई गम ना दिखाना, और या अल्लाह सब बच्चियों के नेक जोड़ मिला दे, या अल्लाह हमारे दिल बदल दे। या अल्लाह हमारे दिल बदलेंगे तो हमारी चॉइसेस बदल जाएंगी, और या अल्लाह अगर हम में से किसी के भी दिल में कोई ऐसी मोहब्बत है ऐसे इंसान की जो हमारे हक़ में बेहतर नहीं या हमारे दीन में बेहतर नहीं, तो या अल्लाह उस मोहब्बत को बदल दे अपनी मोहब्बत में और अपने इस कलाम की मोहब्बत में। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तूब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین. جزاک اللہ خیر.